10 सितंबर दिन सोमवार दिन भर मैं हूं रेहान फदर। तेल की कीमतों में वृद्धि के खिलाफ पूरे भारत में विपक्ष ने बंद बुलाया।
देश जो सुनना चाहता है, युवा जो सुनना चाहता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहे। पूरे देश में टॉयलेट बना दिए हैं, टॉयलेट में पानी नहीं। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, भाषण देते रहते हैं और देश उनको देख कर तंग आ गया है।
कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद पीडीपी ने भी पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा की।
कौन सा मुंह लेके जाएंगे लोगों के पास वोट मांगने के लिए, जबकि 35 की तलवार हमारे सर पे लटक रही।
सुनिएगा अपने पत्रों के उत्तर भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भारत बंद बुलाया था। कांग्रेस ने दावा किया कि कुल 21 दलों ने इस भारत बंद का समर्थन किया। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद की अपील की गई थी। कर्नाटक समेत देश के कुछ अन्य राज्यों में स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों में आज छुट्टी कर दी गई थी। बंद के दौरान कुछ जगहों से तोड़फोड़ की खबरें भी मिली हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा समेत 6 पुलिसकर्मियों को आरोपों से बरी कर दिया है। सीबीआई अदालत ने इस मामले में गुजरात के आईपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन, गुजरात एटीएस के पूर्व प्रमुख डीजी वंजारा, गुजरात पुलिस के अधिकारी एनके अमीन, राजस्थान कैडर के आईपीएस अधिकारी दिनेश एमएन और राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल दलपत सिंह राठौर को आरोप मुक्त कर दिया था। इसके बाद सोहराबुद्दीन के भाई रुबाबुद्दीन ने बॉम्बे हाईकोर्ट में मामले की पुनरीक्षण याचिका दायर की थी। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने साल 2007 में हैदराबाद में हुए 2 बम धमाकों के अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। हैदराबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता दीप्ति बथीनी ने बताया कि अनीक सईद और इस्माइल चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई है, जबकि एक अन्य अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। संयुक्त राष्ट्र में शरणार्थी मामलों के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी ने कहा है कि सरकारों को शरणार्थी समस्या को सुलझाने के लिए और अधिक प्रयास करने चाहिए और उन्हें राजनीतिक लाभ के लिए बलि का बकरा नहीं बनने देना चाहिए। फिलिपो इन दिनों अफगानिस्तान की यात्रा पर हैं। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कुछ शरणार्थी अपराधों में शामिल पाए गए हैं, लेकिन किसी एक की गलती के लिए पूरे समुदाय को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। फिलिपो ने कहा, मुझे इस बात की चिंता है कि कई जगह राजनीतिक लाभ लेने के लिए शरणार्थियों को बलि का बकरा बनाया जाता है। किसी एक इंसान की गलती के लिए पूरे समुदाय पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। यह बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि किसी भी देश में शरणार्थी बहुत कम संख्या में होते हैं और उनके साथ होने वाला भेदभाव बहुत अधिक है। ये थे संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार मामलों के उच्चायुक्त फिलिपो ग्रैंडी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। स्वीडन में रविवार को हुए आम चुनाव में मध्यमार्गी वामपंथी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। उसके सामने मध्यमार्गी दक्षिणपंथी गठबंधन ने चुनौती पेश की थी, लेकिन यह गठबंधन थोड़ा पीछे चल रहा है। इसके अलावा दक्षिणपंथी दल स्वीडन डेमोक्रेट्स तीसरे दल के रूप में उभरा है। इस पार्टी को 18% मत प्राप्त हुए हैं। म्यांमार में रोहिंग्या समुदाय के प्रतिनिधि इन दिनों यूरोपीय संघ के अधिकारियों से मुलाकात कर रहे हैं और वहां मौजूद राजनयिकों से इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस मुलाकात में म्यांमार की सेना पर किस तरह से और ज्यादा प्रतिबंध लगाए जाएं, इस पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा म्यांमार के मामले को अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत में ले जाने पर भी चर्चा होगी। रोहिंग्या समुदाय के प्रतिनिधियों में शामिल यॉ विन ने कहा कि यूरोपीय संघ को म्यांमार की सेना के प्रति और कठोर कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा,
very concerned about the EU position regarding Burma.
बर्मा के संबंध में यूरोपीय संघ के रवैये से हम बहुत अधिक चिंतित हैं। खासतौर पर कुछ सदस्य देश ऐसे हैं जो अभी भी सेना का साथ दे रहे हैं। यही बात हम सभी को परेशान कर रही है। ये थे रोहिंग्या समुदाय के प्रतिनिधि यॉ विन के शब्द। लीबिया में तेल की कंपनी के मुख्यालय पर आज कुछ बंदूकधारियों ने हमला कर दिया। इस हमले में कम से कम 2 लोग मारे गए और 10 घायल हो गए। राजधानी त्रिपोली में सुरक्षा बलों और हमलावरों के बीच मुठभेड़ जारी है और इमारत के भीतर से धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। कंपनी के चेयरमैन मुस्तफा सोनल्ला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और डॉलर के मुकाबले रुपए के कमजोर होने को लेकर कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का देश भर में व्यापक असर रहा। बंद के दौरान कुछ राज्यों में हिंसा की खबरें भी हैं, इनमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल हैं। दिल्ली में बंद का उतना असर जनजीवन पर नहीं पड़ा, लेकिन विपक्ष ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर अलग अलग प्रदर्शन किए। सलमान रावी की रिपोर्ट।
दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें और रुपए के घटते मूल्य के खिलाफ विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, मगर ये प्रदर्शन अलग अलग मंचों से किया गया। एक तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस, तो दूसरी तरफ वामदल। कांग्रेस ने राजघाट से लेकर रामलीला मैदान तक रैली निकाली। इस प्रदर्शन में कई और विपक्षी दल भी शामिल थे, लेकिन इसमें बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता नदारद रहे। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री पर निशाना साधा।
देश जो सुनना चाहता है, युवा जो सुनना चाहता है, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहेंगे। पूरे देश में टॉयलेट बना दिए हैं, टॉयलेट में पानी नहीं है। पता नहीं कौन सी दुनिया में है, भाषण देते रहते हैं और देश उनको देख कर तंग आ गया है। किसान को रास्ता नहीं दिख रहा है, मजदूरों को रास्ता नहीं दिख रहा है। रास्ता हिंदुस्तान में आज सिर्फ 15-20 लोगों को दिखाई दे रहा है, वो है सबसे बड़े हिंदुस्तान के क्रोनी कैपिटलिस्ट।
वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी भारत बंद का खासा असर देखा गया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि मौजूदा केंद्रीय सरकार ने किसानों और मजदूरों की अनदेखी की है।
एक किसान हमें बता दें जिसको मक्के की सरकारी MSP या सरकारी लोगों ने खरीद की हो। आलू, मक्का, आपके गेहूं में किसान पिट गया, धान आने वाला है, धान में पिटेगा। विकास किसने रोका है? विकास रोकने वाले वो लोग हैं जिन्होंने नोटबंदी की थी।
दिल्ली के रामलीला मैदान के पास BBC से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला का कहना था कि महंगाई उनकी पार्टी के शासनकाल में भी थी, मगर इस बार तो हद ही पार हो गई।
जब कच्चा तेल $108 प्रति बैरल था कांग्रेस सरकार में, तो उस समय भी पेट्रोल की कीमत 71 रुपया लीटर और डीजल की कीमत 54 रुपया लीटर थी। आज कच्चा तेल कितना है? आधा रह गया, $68 प्रति बैरल, और मोदी जी की 52 महीने की औसत है $50 प्रति बैरल। फिर भी 83 रुपया पेट्रोल, 73 रुपया डीजल। कारण क्या है? 211% एक्साइज मोदी जी ने पेट्रोल पर बढ़ाई, 443% एक्साइज डीजल पर बढ़ाई।
भारतीय जनता पार्टी के नेता और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों से बात करते हुए विपक्षी दलों के भारत बंद को विफल बताया।
हिंसा का तांडव और मौत का खेल बंद होना चाहिए, और हमारा ये आरोप है कि जनता को कुछ परेशानी है, लेकिन जनता इस बंद के साथ नहीं खड़ी है, और इसी के कारण कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के बाकी लोग गुस्से में खींच कर खौफ का माहौल पैदा कर रहे हैं।
दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और पूर्वी राज्य ओडिशा सहित कुछ अन्य राज्यों में भी बंद का व्यापक असर रहा। पुणे सहित कई स्थानों से हिंसा की खबरें भी मिली हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने शांतिपूर्ण बंद का ही आह्वान किया था और हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सलमान रावी, BBC, दिल्ली।
उधर बिहार से खबर है कि भारत बंद से आम जनजीवन प्रभावित रहा। पुलिस ने दोपहर 1 बजे तक करीब 200 बंद समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया था। बंद को विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त था। पटना से सीतू तिवारी।
बिहार और झारखंड में भी भारत बंद असरदार रहा। बिहार की राजधानी पटना में राजद, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियों सहित सभी विपक्षी दल बंद के समर्थन में सुबह से ही सड़क पर उतरे और सरकार विरोधी नारे लगाते नजर आए। बंद समर्थकों के चलते पटना की सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। शहर का डाक बंगला चौराहा, इनकम टैक्स चौराहा और गांधी मैदान इलाका पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बना रहा। इनकम टैक्स चौराहे पर बंद के समर्थन में उतरे राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा,
जब तक उद्योगपतियों के बारे में सोचे, तब तक आम और गरीब जनता को राहत कैसे मिले।
वहीं पटना में बंद के दौरान पप्पू यादव की पार्टी जाप के कार्यकर्ताओं ने गाड़ियों के शीशे फोड़े, जिसकी वाम दलों और राजद दोनों ने ही आलोचना की। बाद में पुलिस ने लाठी चार्ज करके जाप कार्यकर्ताओं को तितर बितर किया। बिहार पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी प्रेस नोट के मुताबिक बिहार में कुल 678 निरोधात्मक गिरफ्तारी हुई, जिसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी पटना और गोपालगंज में हुई। जहानाबाद, बेगूसराय, आरा, सीतामढ़ी, शेखपुरा, दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन परिचालन बाधित किया गया। वहीं पटना, वैशाली, दरभंगा, कैमूर, गया, सारण में बंद समर्थकों ने सड़क जाम किया। इसके अलावा स्थानीय मीडिया में खबर आई थी कि जहानाबाद में अस्पताल ले जाती हुई 2 साल की एक बच्ची की मौत हो गई, लेकिन पुलिस मुख्यालय ने बंद के चलते ये मौत हुई है इस बात से इनकार किया। वामदल समर्थकों ने भी इस बंद को असरदार बताते हुए कहा कि सरकार की जन विरोधी नीतियों के प्रति जनता ने भी अपनी नाखुशी जाहिर की है।
बंद असरदार रहा पूरे भारत बंद में, पूरा भारत बंद सफल रहा हम लोग का, चारों तरफ बंद रहा पटना में खासकर, पूरा अस्त व्यस्त था सुबह से ही 8 बजे से ही।
पड़ोसी राज्य झारखंड में भी बंद असरदार रहा। भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने यहां बंद की कमान संभाली। स्थानीय पत्रकार नीरज सिन्हा के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे तक 8,000 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी थी। पूर्व राज्य गृह मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित आलमगीर आलम, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, अन्नपूर्णा यादव को गिरफ्तार किया गया। पूरे राज्य में स्कूल बंद रहे और जगह जगह नेशनल हाईवे जाम रहा। कोलियरी से कोयले की ढुलाई पर भी बंद का असर पड़ा। सीतू तिवारी, BBC पटना।
आज छत्तीसगढ़ में भी बंद का व्यापक असर रहा। सरगुजा से लेकर बस्तर तक शिक्षण संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान और यातायात पर इसका प्रभाव देखने को मिला। राज्य के कुछ इलाकों में कहीं कहीं पुलिस और बंद समर्थकों में झड़प की भी खबरें हैं। रायपुर से आलोक पुतुल।
छत्तीसगढ़ में एक दिन पहले से ही कांग्रेस समेत दूसरे विपक्षी दलों ने बंद की तैयारी शुरू कर दी थी। यही कारण है कि शिक्षण संस्थाओं ने रविवार को ही बंदी की घोषणा कर दी थी। बंद समर्थकों ने सोमवार की सुबह सबसे पहले बस स्टैंडों पर आने जाने वाली बसों को रोक दिया। वहीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में पहले से ही बंद का माहौल होने के कारण बंद समर्थकों को बहुत अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ी। सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, बस्तर, सुकमा, बिलासपुर और राजधानी रायपुर में दोपहर तक बंद का व्यापक असर नजर आया। राजधानी रायपुर में सड़कों पर उतरे कांग्रेस नेता PL पुनिया बंद से काफी खुश नजर आए।
देखिए, मैं इस समय रायपुर की सड़कों पे और पूरा घूम के आया हूँ। सब जगह दुकानें बंद हैं, व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद हैं, बसें बंद हैं, पेट्रोल पंप बंद हैं, शिक्षण संस्थान बंद हैं, तो पूरा व्यापक समर्थन मिला है।
पुनिया ने दावा किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर सरकार गलत बयानबाजी कर रही है।
कंपेयर करिए, जब 104-110 US डॉलर से पर बैरल क्रूड ऑयल था, उसमें 55 रुपया मैक्सिमम पेट्रोल गया था और आज कहाँ का कहाँ पहुँचा हुआ है। 40-45 रुपए लीटर डीजल था, आज कहाँ है ये बता तो दें।
हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने एक दिन पहले ही कहा था कि बंद का असर नहीं होगा, लेकिन आज स्थिति दूसरी नजर आई। तेल की कीमतों को लेकर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने PL पुनिया के दावे का भी खंडन किया।
बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत के गिराव और उतार और चढ़ाव से इसकी कीमत में कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। आज रुपये की कीमत में कुछ कमी आई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा गैप दिख रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जैसे जैसे रुपये की स्थिति सुधरेगी बाजार में और पेट्रोलियम का कीमत में गिरावट होगा तो इसमें सुधार आएगा।
छत्तीसगढ़ में अगले 2 महीनों के भीतर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जाहिर है आज की विपक्षी दलों के प्रभावशाली बंद को राजनीतिक गलियारों में चुनाव पूर्व के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
मैंने थोड़ी देर पहले नवभारत टाइम्स के पूर्व संपादक रामकृपाल सिंह से बात की और पूछा कि पेट्रोल कीमत वृद्धि जैसे मुद्दे पर बंद बुलाने से कांग्रेस को राजनीतिक फायदा मिलते हुए देखते हैं आप?
देखिए, बंद बुलाने से फायदा कोई होगा इसमें मुझे डाउट है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं, अगर वो बंद नहीं भी होता तो निश्चित रूप से जनता में एक आक्रोश तो है। जो आज के माहौल में दो चीजों पर विशेषकर जिससे सरकार के प्रति मध्य वर्ग की नाराजगी है, वो एक तो SC ST एक्ट और दूसरा ये पेट्रोल प्राइसेस। अब सवाल इस बात का है कि जो आज का बंद आयोजित किया गया था, उस बंद को देखिए तो उस बंद में मुझे नहीं लगता है कि वो मध्य वर्ग को कोई आकृष्ट करेगा, क्योंकि उसमें लुम्पेन एलिमेंट ज्यादा दिखाई दिए हैं और उन सरकारों में जो भाजपा विरोधी सरकारें रही हैं वहां पे जैसे लगता था कि स्टेट स्पॉन्सर्ड है, बिल्कुल खुली छूट थी बसों को तोड़ना ये सब। लेकिन कई बार सवाल इस बात का उठता है कि जब विकल्प आता है कि क्या वो नाराजगी इतनी हो गई है 8 महीने बाद भी वैसी रहेगी और इस हद तक रहेगी कि वो दूसरे के खेमे में जाने को बाध्य करे। क्योंकि ये दोनों जो मुद्दे हैं इस पे कांग्रेस कमजोर विकेट पर है, क्योंकि याद कीजिए 2013 में भी प्राइसेस करीब करीब यही थी पेट्रोल की, और उस 2013 में यूपीए सरकार ने 1,43,000 करोड़ सब्सिडी दी थी पेट्रोलियम कंपनीज को, और जबकि ये सरकार ने एक भी पैसे सब्सिडी नहीं दी है। हालांकि वोटर जो होता है वो कोई करंट अकाउंट डेफिसिट और जीडीपी देख के वोट नहीं देता है। माहौल आज की तारीख में ये है कि निश्चित तौर पर ये बीजेपी की सरकार के अगेंस्ट है एनडीए की सरकार के, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि वो क्या वो वाकई इस लेवल पर है कि वो दूसरे के खेमे में पहुंचा देगा, और जब विकल्प आएगा वोट देने को तो क्या वो एनडीए को छोड़ के यूपीए की तरफ जाएगा।
अभी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाप्त हुई है एक दिन पहले, और वहाँ वो लोग बहुत आत्मविश्वास से कहते देखे गए कि कोई बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस नहीं पेश करने जा रही।
हर पार्टी की एक गुठली होती है जिसको कोर स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो पार्टी चाहे सत्ता में रहे या बाहर रहे उतना वोट उसको मिलता है। समाजवादी पार्टी का 20% है, बीएसपी का 20% है, ऐसे ही बीजेपी का कोर स्ट्रेंथ 20% होता है। उसको लग रहा है कि ये सारी जो नाराजगी इन लोगों की है, लेकिन जब वोट आएगा तो ये लोग कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि इनके जो सवर्ण है ये सब है, इनके पास कोई विकल्प नहीं है। और जो उसको ये लगता है कि दलित, चूंकि हम इतनी गालियां खा रहे हैं तो दलितों का एक बहुत बड़ा चंक हमको मिलेगा, उनका गणित सारा ये है। अब मैं देखिए, हालांकि ये बड़ा रिस्की गणित है, ये उनकी अपनी खुशफहमी है, मैं इसको ये कहता हूँ, लेकिन इस आत्मविश्वास के पीछे यही कारण है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट है कि इससे नाराजगी तो है, और आज जो प्रदर्शन हुआ है मुझे लगता है उस नाराजगी का एक तरह से मैनिफेस्टेशन था, लेकिन बहुत हद तक मिडिल क्लास इसको अच्छा भी नहीं मानता, बहुत सारे लोगों को तकलीफें भी होती हैं, वो जानते हैं कौन ये कुल मिलाकर के पॉलिटिकल और पार्टी बन रहा है। लेकिन जो जनरल माहौल है वो निश्चित तौर पर वर्तमान सरकार के खिलाफ है।
ये थे वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह।
बीबीसी हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
ये बीबीसी है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। भारत प्रशासित कश्मीर में लोकतंत्र की प्रक्रिया 3 महीने से स्थगित है। राज्य में गवर्नर शासन है और सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं कि चुनाव के लिए वातावरण अनुकूल नहीं है। इसी बीच भारत सरकार ने राज्य में पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है, लेकिन राज्य की दो बड़ी पार्टियों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने चुनावी प्रक्रिया के बहिष्कार करने की घोषणा की है। अब सरकार नॉन पार्टी आधार पर चुनाव करवाना चाहती है, परंतु इस स्थिति के कारण लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। श्रीनगर से रियाज मसरूर।
2011 में जम्मू कश्मीर में चुनाव के बाद जो पंचायतें घटित हुई थीं, इनका कार्यकाल 2016 में खत्म हो गया था। पिछले 2 वर्ष से कश्मीर में हिंसा, चरमपंथ और दूसरी घटनाओं को लेकर स्थिति अस्त व्यस्त है। इस बीच बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार भी गिर गई है और लोगों में इतना आक्रोश है कि लोकसभा के उपचुनाव भारी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बावजूद नहीं हो सके। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने चुनाव का मामला संविधान की धारा 35A के साथ जोड़ दिया और कहा कि अगर केंद्र सरकार इस धारा को सुरक्षित नहीं कर पाती तो इनकी पार्टी पंचायत क्या लोकसभा का चुनाव भी बायकॉट करेगी।
That the J&K National Conference will not participate in these elections unless and until government of India and the state government clears its position in this regard and takes effective steps for the protection of Article 35A in and outside the court.
नेशनल कॉन्फ्रेंस के बाद आज पीडीपी ने भी इस चुनावी प्रक्रिया को अनुचित बताकर इसका बॉयकॉट करने की घोषणा कर डाली। पीडीपी की अध्यक्षा और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती।
और लोगों में सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है, हम कौन सा मुंह लेके जाएंगे लोगों के पास वोट मांगने के लिए जबकि 35 की तलवार हमारे सर पे लटक रही।
घाटी में दो वर्ष से हर दिन झड़पें होती हैं, संदिग्ध बंदूकधारियों के हाथों आम नागरिकों की हत्याएं हो रही हैं और चरमपंथियों के विरुद्ध सैन्य ऑपरेशन ऑल आउट के विरुद्ध जनता में गुस्सा है। सरकार तो टूट गई है और राज्य पर गवर्नर शासन लागू है। विधानसभा के चुनाव पर सरकार चुप है, परंतु पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव कराने की तैयारियां जोरों पर हैं। ये सब इसके बावजूद हो रहा है कि राज्य के तकरीबन सभी राजनीतिक दल कहते हैं कि चुनाव के लिए उचित परिस्थिति नहीं है। आम लोग भी पंचायती चुनाव के अचानक निर्णय पर नाराज हैं।
अब इनके लिए कोई दुनिया को दिखाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, यहाँ के कुछ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ रास्ता नहीं है, क्योंकि इसलिए इलेक्शन कर क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है।
ये एक प्लान बनाया जा रहा है दुनिया को दिखाने के लिए कि लोग एक्चुअली यहाँ चाहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आप तो हालात उसे वाकिफ है कि हालात कैसे बद से बदतर होते जा रहे हैं।
भारत सरकार और गवर्नर प्रशासन का मानना है कि पंचायती चुनाव से शांति बहाली के प्रयास सफल होंगे और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होगा, परंतु विश्लेषकों का कहना है कि इलेक्शन से शांति नहीं बल्कि शांति से इलेक्शन संभव होते हैं। विश्लेषक एजाज अयूब।
देखिए, इलेक्शन से अमन कायम नहीं होता है, अमन के बाद इलेक्शन होते हैं। इस तरह से देखेंगे कि आप इलेक्शन करेंगे उसके बाद अमन होगा, मेरे ख्याल से ये एक गलत नजरिया है। मेरे ख्याल से अभी चूंकि मेनस्ट्रीम का जो बहुत सारा एरिया यहाँ पे श्रिंक हो चुका है बिकॉज सिंस लास्ट 3-4 साल, तो उस चीज़ के मद्देनज़र रखते हुए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की भी यही कोशिश रहेगी कहीं ना कहीं से जो लोकल पब्लिक है उसको फिर से मेनस्ट्रीम में इन्वॉल्व किया जाए।
जहां अलगाववादियों का कहना है कि विधानसभा लोकसभा या पंचायतों के लिए होने वाले चुनाव कश्मीर समस्या को झुठलाने के लिए करवाए जाते हैं, वहीं अब भारत का समर्थन करने वाले राजनीतिक गुटों ने भारतीय संविधान के आर्टिकल 35A की सुरक्षा को मुद्दा बनाकर नई दिल्ली से कहा है कि राज्य को देश में खास दर्जा देने वाली इस धारा पर अपना स्टैंड साफ करे। गौरतलब है इस धारा को बीजेपी का समर्थन करने वाली कुछ एनजीओज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और इसकी सुनवाई जनवरी तक टाल दी गई है। अलगाववादियों और चरमपंथी गुटों ने तो पहले ही पंचायती चुनाव के बॉयकॉट की कॉल दी है और अब भारत का समर्थन करने वाले मेनस्ट्रीम राजनीतिक गुटों ने भी बॉयकॉट की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब सरकार पंचायती चुनाव को नॉन पार्टी आधार पर करवाना चाहती है, परंतु विश्लेषकों का मानना है कि ऐसा करके कश्मीर में पहले से कमजोर लोकतंत्र और भी कमजोर हो जाएगा। रियाज मसरूर, बीबीसी श्रीनगर।
आज सोमवार है और आज का दिन होता है आपके पत्रों के उत्तर का।
आपकी राय, आपकी चिट्ठियों के साथ मैं हूं राजेश प्रियदर्शी और स्टूडियो में मेरे साथ हैं
मैं हूं इंदु पांडे। मेरा भी नमस्कार।
नमस्कार, आइए शुरू करते हैं चिट्ठियों का सिलसिला। आज बहुत सारी चिट्ठियां हैं, पोस्टकार्ड दिख रहे हैं, चलिए पोस्टकार्ड से शुरू करें। हमारे दूर दराज के जो श्रोता हैं अक्सर शिकायत करते हैं कि ईमेल वालों की बारी पहले आ जाती है, तो आज पोस्टकार्ड से।
जी जरूर, ये हमारे पास पोस्टकार्ड आया है पलामू झारखंड से। जमील अहमद अंसारी साहब ने लिखा है, कहते हैं कि मैंने इतिहास विषय में एमए बीएड किया है और वर्तमान में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहा हूं। रेहान फजल साहब द्वारा प्रस्तुत विवेचना में मुगल शहजादी जहांआरा के व्यक्तित्व पर जो प्रकाश डाला गया उसके लिए उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। इन्हें बहुत अच्छी लगी।
जमील साहब, आपकी बात हम रेहान साहब तक पहुँचा देंगे और आपकी हैंड राइटिंग बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत लिखावट में अपने चिट्ठी लिखी है,
बहुत अच्छी है। और हमारे पास बहुत सारी ईमेल आए हैं आज। विकास कुमार, वर्तमान निवास लिखा है कोलकाता, मूल निवास बेगूसराय बिहार
जी।
लिखते हैं कि रविवार को बीबीसी के रेडियो संपादक श्रीमान राजेश जोशी जी द्वारा सीताराम येचुरी का इंटरव्यू प्रसारित हुआ जो बेहतरीन था। अब जब मीडिया जगत में हाल के वर्षों में निष्पक्षता पर तीखी बहस होती आ रही है और कई बार हम में से कई श्रोता तो बीबीसी को भी उस कीचड़ में खींच लाते हैं, उनके लिए ये इंटरव्यू किसी नज़ीर से कम नहीं। तो राजेश जी की जो लेखन शैली है जिसकी बानगी कई बार वो ब्लॉग के द्वारा बीबीसी हिंदी के वेबसाइट पर दिखते हैं, उसके बहुत सारे लोग मुरीद हो गए हैं। सद्दाम हुसैन हैं बाड़मेर राजस्थान से, रुपेश कुमार लंबूतरे यवतमल महाराष्ट्र से, जीशान नैयर हैं तरैया बेगूसराय से, अमित कुमार सिंह चंदौली यूपी से और KSN मूर्ति मस्कट ओमान से। ये
इतनी लंबी लिस्ट है राजेश जोशी के प्रशंसकों की। जाहिर है कि वो बहुत खुश होंगे ये देखकर कि आप सब लोगों ने उनके काम को पसंद किया है। निष्पक्षता का जहाँ तक सवाल है, जब भी हमारे पास मौका होता है, जब भी हमें ऐसे इंटरव्यूज़ मिलते हैं, लोग हमसे अगर बात करने को तैयार होते हैं तो चाहे वो दक्षिणपंथी हों, वामपंथी हों, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के लोग हों, हम आपके यानी श्रोताओं की तरफ से उनसे वही सवाल पूछते हैं जो पूछे जाने चाहिए, यानी वो सवाल जिनके जवाब उनसे मांगे जाने चाहिए। तो हम पर भी, बीबीसी हिंदी पर भी कई बार ये आरोप लगे हैं कि हम निष्पक्ष नहीं हैं। चलिए, अगर इस इंटरव्यू से आपको ऐसा लगा कि हमारी निष्पक्षता एक बार फिर साबित हुई तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन हम हमेशा इसी तरह काम करते रहे हैं।
और हमारे पास ये मेल आया है कि शुक्रवार दिन भर में रेहान फजल की विवेचना एक वयस्क श्रोता के लिए तो बहुत मज़ेदार थी, परंतु बीबीसी हिंदी के श्रोता जो नाबालिग भी हैं उनके लिए क्या ये सही था? ?
मैंने वो कार्यक्रम सुना, वो रिझाने की कला पर एक किताब है। ये कार्यक्रम शुरू से लेके आखिर तक उस पर कुछ भी, मैंने इस बात को बहुत गौर से सुना कि उसमें कुछ भी अश्लील, अभद्र या ऐसा न हो जो जो लोग परिवार के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं उनको बुरा लगे। क्या आपको ऐसा लगा कि उस कार्यक्रम में ऐसा कुछ था जो जो लोग नाबालिग हैं उनको नहीं सुनना चाहिए? मुझे नहीं लगा, लेकिन हो सकता है कि आपकी राय मुझसे अलग हो।
और शनिवार का इंडिया बोल में वात्सल्य राय, नितिन श्रीवास्तव और मेहमान विशेषज्ञ ने बेहतरीन तरीके से भारतीय राजनीति का चित्रण पेश किया। 2019 का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, तो ये बहुत अच्छा लगा। ये हमारे को लिखा है सर्वेश्वरी कॉलोनी संजय नगर चंदौली उत्तर प्रदेश से।
और इनका नाम क्या है?
अमित।
अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका। तीनों लोग जो इस कार्यक्रम में शामिल थे उन तक आपकी प्रशंसा पहुंचा दी जाएगी।
और ये हैं बालाराम विश्नोई ग्राम केलनसर जिला जोधपुर राजस्थान से, लिखते हैं कि 9 सितंबर को वसतुल्लाह खां की डायरी में एक लोकतांत्रिक देश में धार्मिक आधार पर हो रहे भेदभाव पर व्यंग बहुत अच्छा था। आगे लिखा है कि मैं नहीं जानता कि 21वीं शताब्दी में इस तरह का भेदभाव किस धर्म ईश्वर के पक्ष में है, लेकिन मानव धर्म के विरुद्ध अवश्य है। तो आगे यही कहते हैं कि इनकी सलाह है वसतुल्लाह खां साहब के लिए कि ऐसी डायरी लिखकर अपनी रोजी रोटी को खतरे में क्यों डाल रहे हो? हो सकता है कि वो लोग आपकी डायरी सुनने पढ़ने को लेकर बहिष्कार कर दें, तो हम जैसे श्रोताओं का क्या होगा?
जी बालाराम विश्नोई जी, आपने सही कहा, वसतुल्लाह खां ने एक व्यंग किया है, और किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक देश में धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यही वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। और आप भी जो व्यंग कर रहे हैं वो भी वसतुल्लाह साहब की ही तरह आप भी व्यंग में अपनी बात कह रहे हैं जो हमें मज़ेदार लगी, लेकिन अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, तो चिट्ठियों के सिलसिले को हम फिलहाल यहीं रोकते हैं और आपसे विदा लेते हैं, लेकिन उससे पहले इंदु जी पता बताएंगी।
पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल आईडी आप बता दीजिए।
हाँ, अगर आप हमें ईमेल से अपनी चिट्ठियां लिखना चाहें तो हमारा पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
ओवल में चल रहे भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवें टेस्ट में इंग्लैंड की स्थिति बहुत मजबूत हो गई है। 5 विकेट उसके खो चुके हैं, 355 रन बने हैं। इंदु पांडे नजर रखे हुए हैं, बताइए इंदु क्या है खबर ओवल से?
बिल्कुल, आपने ये सही कहा कि इंग्लैंड की स्थिति काफ़ी मजबूत है, और कुक अभी थोड़ी देर पहले आउट हुए हैं 147 रन बना करके, और अपना आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे लेस्टर कुक ने शतक लगा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और उनका आखिरी टेस्ट शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने अपने पहले टेस्ट में भी शतक लगाया था, और ऐसा करने वाले वो इंग्लैंड के पहले क्रिकेटर हैं। लेस्टर कुक ने भारत के खिलाफ ही अपना पहला टेस्ट खेला था और आखिरी टेस्ट भी भारत के खिलाफ खेल रहे हैं। हालांकि भारतीय टीम को काफ़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है, और अब आगे क्या होगा क्योंकि रवि शास्त्री ने बोला है कि टीम बहुत अच्छी है। क्रिकेट एक्सपर्ट विजय लोकपल्ली,
इंग्लैंड से जब वापस आएंगे तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि हम सीरीज जीते। आप सीरीज जीतने गए थे, आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन इंग्लैंड पे था, इसी इरादे से आप साउथ अफ्रीका भी गए थे, वहां पे भी आप टेस्ट सीरीज हारे, और यहाँ इंग्लैंड में आप हारे हैं। तो अभी आपको 4 साल और इंतजार करना पड़ेगा दोबारा इंग्लैंड में सीरीज जीतने के लिए। अब रवि शास्त्री के पास UAE में अभी जो होने वाला एशिया कप वो जितवाएं, थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस वापस आएगा, और फिर जो एंड ऑफ द ईयर जो इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया टूर करना है वो उनका एक और एक जबरदस्त टेस्ट होगा।
तो भारत के खिलाफ मौजूदा टेस्ट सीरीज इंग्लैंड पहले ही 3-1 से जीत चुका है।
तो इस तरह से करीब करीब 400 रन की लीड हो गई है चौथी पारी में। बहुत दुष्कर काम, बहुत मुश्किल काम होगा भारत के लिए अगर ये टेस्ट मैच उनको जीतना है। फिलहाल इंग्लैंड की स्थिति काफी मजबूत। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर।
बीबीसी समाचार। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में आज मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भारत बंद बुलाया था। कांग्रेस ने दावा किया कि कुल 21 दलों ने इस भारत बंद का समर्थन किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोहराबुद्दीन मुठभेड़ मामले में सीबीआई अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व एटीएस प्रमुख डीजी वंजारा समेत 6 पुलिसकर्मियों को आरोपों से बरी कर दिया। हैदराबाद की एक स्थानीय अदालत ने साल 2007 में हैदराबाद में हुए 2 बम धमाकों के अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। अनीक सईद और इस्माइल चौधरी को फांसी की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर को यही विराम देते हैं। स्टूडियो संभाल रहे थे कपिल देव सिंह। रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।